नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर कल होगा दूसरा अमृत स्नान। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा को पर्यटन आधारित परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को सनातन के प्रति नजरिया बदलने व सम्मान देने की दी सलाह। और प्रदेश में मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि, मौसम विभाग ने कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान होगा। इस दिन अमृत स्नान बहुत शुभ माना जाता है। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। महाकुंभ में आज शाम तक 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि अब तक कुल 14.76 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में जिला स्तरीय विकास योजना व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राज्य में गरीबी उन्मूलन व वंचित वर्गों के जीवन में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच जगत सिंह नेगी ने जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाई गई अधिकतर शिकायतों का समाधान किया गया है और किन्नौर के विकास के लिए सभी विभाग बेहतर कार्य कर रहे हैं।
आज की बैठक में जो मीटिंग्स पहले हुई हमारे, उनको भी हम साथ में ले रहे हैं। तो आज की तारीख में अभी तक तो जितने भी मुद्दे पिछले पेंडिंग थे, ज्यादातर मतलब मैं कह सकता हूँ कि 99% रिड्रेस हो गए हैं। अभी कुछ नए मत जो है हमारे माननीय गैर सरकारी सदस्यों ने आज की बैठक के लिए रखा है, उसके ऊपर भी हम अभी जो है चर्चा करेंगे। और अभी तक की जो चर्चा हुई है उससे मुझे ये लग रहा है कि ज्यादातर विभाग जिनके लोगों से संबंधित शिकायतें थी अच्छे तरीके से और समय रहते हुए उनको रिहर्सल किया गया है।
नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा को पर्यटन आधारित परियोजना के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला के निकट जाठिया देवी में बनने वाली माउंटेन सिटी परियोजना शिमला की भीड़ को कम करने की दिशा में सहायक साबित होगी। उन्होंने हिमुडा की परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया। राजेश धर्माणी ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजनाओं का निर्माण करने के हिमुडा को निर्देश दिए। बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के मोहल भाटी में 125 कनाल भूमि की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान जिला के नरघोटा में प्रस्तावित पर्यटन गांव परियोजना की भी समीक्षा की गई। सोलन जिला के अर्की से प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस कल रात कौशाम्बी फतेहपुर सीमा पर कनवार के पास एक क्रेन से टकरा गई, जिससे इसमें सवार 31 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि कौशाम्बी जिला के सिराथू के उपमंडलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार घायलों में 6 व्यक्तियों को अधिक चोट लगने और एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। दुर्घटना में अर्की उपमंडल के धार ब्राह्मणा के 75 वर्षीय तुलसीराम शर्मा के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है और वे सघन चिकित्सा इकाई में उपचाराधीन हैं। उपायुक्त ने कहा कि 14 घायल व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू और 10 घायल व्यक्ति जिला अस्पताल कौशाम्बी में उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सोलन इस संबंध में कौशाम्बी जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है और सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश के अधिकारियों को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सनातन का अपमान करना कांग्रेस की विरासत और फितरत भी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सनातन धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोगों द्वारा नकारे जाने से कांग्रेस की कुंठा सामने आ रही है और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन के अपमान पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को देश में हो रहा विकास क्यों नजर नहीं आता, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 144 साल बाद आयोजित हो रहा महाकुंभ लोगों की आस्था का केंद्र है और अब तक यहां 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों के आने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस को सनातन के प्रति अपना नजरिया बदलने और सनातन का सम्मान करने की सलाह दी है। प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने और मत प्रतिशतता बढ़ाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान प्राप्त किया। देश के 9 जिला उपायुक्तों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। उपायुक्त ने इस प्रतिष्ठित अवार्ड का श्रेय मतदाताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया है। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति जिले में वर्ष 2024 के चुनाव में सभी के साझे प्रयासों से मत प्रतिशतता 76% रही, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 12% की वृद्धि दर्ज की गई।
हमें नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ECI के रिकमेंडेशन के बाद, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मेजर हमारा इसमें ये था कि 2019 इलेक्शंस में जो वोटिंग परसेंटेज था 64% रहा और लास्ट ईयर के इलेक्शन जो थे उसमें 12% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई ईवीएम में और साथ साथ जो हमारे बैलेट के वोटिंग में भी काफी इम्प्रूव हुआ। तो इसमें मैं तो सबसे पहले डेडिकेट करना चाहूंगा ये अवार्ड हमारे लाहौल स्पीति के वोटर्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे आए, खासकर जो इलेक्शन टीम है जो 3 महीने कड़ी मेहनत की है इसमें और साथ साथ हमारे जितने भी HODs हैं।
प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, जिससे तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक कल 29 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान ऊना, बिलासपुर, बरठी और हमीरपुर में लोगों को इस दौरान शीतलहर का सामना भी करना पड़ेगा।
बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें जो दिन के तापमान है देखिए वो एवरेज प्रदेश में पूरे प्रदेश में ही 5 से 8 डिग्री सामान्य से अधिक चल रहे हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है जो हमारे प्लेन के क्षेत्र है जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसमें स्पेशली मंडी, चंबा है, बरठी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान थे वो सामान्य से काफी कम और यहाँ पे सुबह शीतलहर की कंडीशन दर्ज की गई थी। और देखिए कल अर्ली मॉर्निंग में जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है और चंबा का कुछ एक क्षेत्र यहाँ पे सुबह के समय शीतलहर हो सकती है। कल 29 की इवनिंग एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगा। हालांकि देखिए इसका जो इफेक्ट है 29 और 30 तारीख को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा और कांगड़ा की जो हाई रीजन है यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है।
राजधानी शिमला से संबंध रखने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अंकित सूद को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वायुसेना वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अगस्त 2023 में कुल्लू जिले में खराब मौसम के बावजूद उड़ान के माध्यम से 12 गंभीर रोगियों को सफलतापूर्वक PGI चंडीगढ़ पहुंचाया था। अंकित सूद ने इस दौरान अपने अदम्य साहस की बदौलत एक सच्चे वायु योद्धा के रूप में कार्य किया और आपदा में फंसे लोगों को राशन व मेडिकल किटें वितरित कीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर कल होगा दूसरा अमृत स्नान। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा को पर्यटन आधारित परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को सनातन के प्रति नजरिया बदलने व सम्मान देने की दी सलाह। और प्रदेश में मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि। मौसम विभाग ने कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।